दौला पुस्तक नववी लेक्चर नंबर 15 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयव्याण नमो वर्षायाण नमो लोए सौवसाहून सिद्धादद्धट्टमला विशुद्ध बुद्धिये लद्ध सौवत्था तिहुवन शिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सौवे। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। यह षटखंडागम का चौथा खंड यहाँ वेदना नाम का है और उसमें कृति अनुयोग द्वार यहाँ का विषय है। नववी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 151 पर हम आ गए। 151 यह शंका समाधान समाधान का जो नीचे का पैराग्राफ है वहां हम पढ़ेंगे। देखो क्या कहना चाहते थे यहाँ पर। ये तो मति ज्ञान के भेदों की चर्चा हुई, अवग्रह इहा अवाय और धारणा, और उस संबंधी अवग्रह के बारे में, यहाँ के बारे में, अवाय के बारे में ये अलग अलग प्रश्नोत्तर यहाँ हो गए हैं। तो यहाँ प्रत्यय यानी जो ज्ञान को यहाँ प्रत्यय कहने में आ रहा है, जैसे अवग्रह प्रत्यय, इहा प्रत्यय, और उन प्रत्ययों की यहाँ चर्चा चल रही है। प्रत्यय शब्द अनेक जगह आता है, जैसे कर्मों के उदय में वहाँ पर भी उसको भी द्रव्य प्रत्यय यानी कर्म के निमित्त जो है, बंध के निमित्त, उसको भी प्रत्यय कहते हैं। यहाँ प्रत्यय ज्ञान को कह रहे हैं, मति ज्ञान के जो भेद है उसको यहाँ प्रत्यय कह रहे हैं। देखो नीचे का पैराग्राफ है ना, एक शब्द के व्यवहार का कारणभूत प्रत्यय एक प्रत्यय है। मति ज्ञान के भेदों की चर्चा करने के बाद अवग्रह यावाय धारणा, यहाँ उसके विषय संबंधी चर्चा चल रही है। विषय के अपेक्षा से मति ज्ञान के ही भेद बता रहे। जैसे हम विषय कहते एक एक विद बहु बहुविद, ये विषय है, परंतु उस मति ज्ञान को भी एक एक विद बहु बहुविद आदि कहने में आता है, और उसको एक प्रत्यय दो प्रत्यय यानी एक प्रत्यय एक विध प्रत्यय ऐसा कहने में आता है। यानी मति ज्ञान को ही एक एक विध नाम दे रहे हैं, क्योंकि मति ज्ञान के भेद है ना। मति ज्ञान के भेद कैसे करते हम, अवग्रह यावाय धारणा 4 और 5 इंद्रिय मन के द्वारा इंटू 6 और फिर उसके 12 विषय, तो 12 विषय वो विषयों के भेद नहीं, वो विषयों की अपेक्षा मति ज्ञान के ही भेद कर रहे हैं, क्योंकि वो 12 विषय जो कह रहे हैं वो 12 विषयों से गुणा करते हैं मति ज्ञान, उनको जानने वाले मति ज्ञान को वो मति ज्ञान का भेद कहने में आता है। हो ना, निमित्त की बात कहाँ चल रही है, अभी यहाँ भेदों की चर्चा चल रही है। निमित्त तो होते ही है, वहां पर निमित्त तो है ही है, उसकी कहाँ ना है। हर जो कार्य हो रहा है अभी मति ज्ञान का क्षोभ, मति ज्ञानावरण का क्षोभ, क्षम वीर्यांतर है, ज्ञान की पर्याय में उसका निमित्त है। यहाँ तो विषय को जानने वाले ज्ञान का भेद बता रहे, वो ज्ञान का भेद में उसको इंक्लूड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर, और उसको प्रत्यय कह रहे हैं। तो यहाँ कहते एक शब्द के व्यवहार का कारणभूत प्रत्यय एक प्रत्यय है, यानी उस मति ज्ञान को एक कहेंगे हम। विषय की अपेक्षा एक को जानने वाले की अपेक्षा वो प्रत्यय को भी एक प्रत्यय कहेंगे। अब एक विध जो है, विध शब्द का ग्रहण प्रकार के ग्रहण के लिए आता है, यानी प्रकार एक प्रकार दो प्रकार के तीन प्रकार के लिए प्रकार का ग्रहण यानी प्रकार को जानना, उसके लिए प्रकार शब्द आया यानी विध शब्द आ गया। अतः बहुविध का अर्थ बहुत प्रकार है, यह इसका तात्पर्य है। एक प्रकार का बहु प्रकार का यह एक विध और बहुविध का अर्थ है। जाति में रहने वाली बहुसंख्या को अर्थात अनेक जातियों को विषय करने वाला प्रत्यय बहुविध कहलाता है। प्रत्यय निर्ज्ञान मति ज्ञान का भेद, उसको हम बहुविध कहेंगे। गाय, मनुष्य, घोड़ा और हाथी आदि जातियों में रहने वाला अक्रम प्रत्यय चक्षुर्जन्य बहुविध प्रत्यय है। ये तो हमने देखा ना, वो तो पांचों इंद्रिया मन सभी में ये सब विषय लगा सकते हैं। तो ये चक्षुर्जन्य ने चक्षु इंद्रिय के निमित्त से होने वाला ये बता दिया। अभी श्रोत्रजन्य, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जो बहुविध है, जो हम सुनने में बहुविध कैसे लगाना, अनेक विषयों को कैसे सुनते हैं हम, तो कहते तत, वितत, घन और सुशीर आदि शब्द जातियों को विषय करने वाला अक्रम प्रत्यय श्रोत्रज बहुविध प्रत्यय है। अक्रम है, एट अ टाइम है। जैसे चक्षु इंद्रिय में हमने देखा था कि एक युगपत गाय, मनुष्य, घोड़ा आदि अनेक जातियों को एक साथ हम देख सकते हैं, वो अक्रम चक्षुर्जन्य हुआ। अभी अक्रम है एट अ टाइम, एक साथ हम, हाँ एक साथ, क्रम से नहीं। क्रम से तो हम पहले हमने गाय को देखा, फिर घोड़े को देखा, फिर मनुष्य को, ऐसा नहीं। अभी घोड़ा और मनुष्य, घोड़े सवार है तो हम घोड़ा और मनुष्य दोनों को एट अ टाइम एक साथ देख रहे हैं, तो बहुविध हो गया। अब ऐसे ही कर्णेन्द्रिय के द्वारा बहुविध प्रत्यय, वो बहुविध विषय होगा तो बहुविध प्रत्यय भी होगा यहाँ जानने वाला। तो हम जो वाद्य वृंद जो है, वो वाद्य में कोई तबला भी बजा रहा है, वो कोई उसके जो पेटी बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कितने अनेक प्रकार के हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। यानी तंतु वाद्य है, तार के वाद्य है, सारंगी है, ये तत्त वितत, जैसे घंटा का नाद है, ये सब उसके अंदर आ गए। ये चार में ये सब इंक्लूड होते हैं। तो ये तत्त वितत, घन और सुशीर आदि शब्द जातियों को विषय करने, वो शब्दों की जातियां अलग, अक्रम प्रत्यय, हाँ अनक्षरात्मक के ये भेद है। जैसे भाषा होती है अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, और अनक्षरात्मक के ये भेद बताए गए। ये श्रोत्र ज, श्रोत्र के द्वारा उत्पन्न बहुविध प्रत्यय है। अभी सुगंधि में कपूर, अगुरु, तुरुष्क, ये सुगंधि द्रव्य विशेष है, कुछ विशिष्ट सुगंधि द्रव्य, और चंदन आदि सुगंध द्रव्यों में रहने वाला यौगपद्य, यौगपद यानी युगपद, एक ही समय में ऐसा मिश्रित गंध को जानने वाला यौगपद्य प्रत्यय घ्राणज बहुविध प्रत्यय है। यानी घ्राणेन्द्रिय के द्वारा जो अनेक जाति के गंधों को हम जानते हैं, उसको घ्राणज बहुविध प्रत्यय कहने में आता है। प्रत्यय ने वो ज्ञान के भेद, मति ज्ञान के भेदों को यहाँ प्रत्यय कहने में आ रहे हैं। अब ये रसनेन्द्रिय की बात करेंगे। तिक्त, कषाय, आम्ल, मधुर और लवण रसों में एक साथ रहने वाला प्रत्यय रसनज, यानी रसना के द्वारा उत्पन्न, ज लगाते तो उससे उत्पन्न बहुविध प्रत्यय है। क्योंकि हम भोजन करते हैं ना, चाव से खाते हैं, अरे इसमें थोड़ा नमक कम है, तो नमक, तीखा, खट्टा, मीठा सबका एट अ टाइम ज्ञान हो रहा है ना हमको, मुंह में रखा है ना, वो पूरे दिन में कितने घंटे जाते हैं किचन में। और ये उसको जानने वाला रसन है जो बहुविध प्रत्यय से जानता है उसको। अभी आगे 152 पृष्ठ पर, अभी स्पर्शन में भी लेना ये ऐसा स्निग्ध, मृदु, कठिन, उष्ण, गुरु, लघु और शीत, जो स्पर्श के जो पर्याय है उसके जानने वाला वो स्पर्शज ज्ञान होगा यहाँ पर। 152 पेज है। ये मति ज्ञान के भेदों की चर्चा चल रही थी, अवग्रह या वायाधारणा की बात पढ़ी हमने। अब 12 विषयों की अपेक्षा ज्ञान के जो भेद है, वो ज्ञान को यहाँ प्रत्यय कहने में आ रहा है। पहली लाइन देखो, स्निग्ध, मृदु, कठिन, उष्ण, गुरु, लघु, शीत आदि स्पर्शों में, आदि यानी शीत उष्ण, एक साथ रहने वाला स्पर्शज बहुविध प्रत्यय है। अब इसमें से एक साथ जो कुछ हो सकते उसकी बात है यहाँ पर। यह प्रत्यय असिद्ध नहीं है, असिद्ध नहीं है का अर्थ है प्रसिद्ध है, यानी हमारे अनुभव की बात है ये, हमें ज्ञात है, क्योंकि वह इंद्रियों आदि द्वारा उपलभ्यमान है। उपलभ्यमान है वो जाना जाता है, और जिसकी उपलब्धि होती है उसका उपन्नव नहीं किया जाता। उपन्नव करना, निन्नव करना, उसको ढकना, वो निन्नव नाव का दोष आता है ना, ये उपन्नव। क्योंकि ऐसा करने में जो उपलब्धि है ना, जो प्रकट हमारे ख्याल में आ सकता है, उपन्नव अनुपलब्ध, उसका उपन्नव नहीं किया जाता है, उसको हम ठुकरा नहीं सकते कहो, या उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। रूल आउट नहीं कर सकते, ऐसा करने में अव्यवस्था की आपत्ति के साथ जाति विषयक बहु प्रत्यय के निमित्त से होने वाले बहुवचन के भी व्यवहार के अभाव की आपत्ति आती। क्या कहना चाहते हैं? व्याकरण में जो एक वचन बहुवचन आदि वापरा जाता है, तो बहुवचन तभी वापरा जा सकता है, हम बहु को एक साथ जानेंगे, अनेकों को एक साथ जानते हैं, तभी तो बहुवचन वहां यूज करते हैं हम। ख्याल में आते हैं ना, हम कहते हैं वहां अनेक प्रकार के पशु आए थे, हम पशु संग्रह में गए तो वहां बहुत प्रकार के पशु एक साथ रखे हुए थे, ऐसा हम कहेंगे। तो बहुत प्रकार के रखे थे यानी वो अनेक वचन हम वहां यूज करें, बहुवचन यानी अनेक वचन, तो अनेकों को एट अ टाइम जानते हैं, तभी तो वो वचन भी यूज कर सकते, ये कहना चाहते हैं। नहीं तो वचन की प्रवृत्ति नहीं होती, एक एक को ही कहना पड़ता। अगर एक एक को ही जानते तो एक एक को ही कहना पड़ता, अनेकों को एट अ टाइम कह नहीं सकते, ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर एक जाति को विषय करने के कारण, पेज नंबर 152 नया पैराग्राफ, इसके प्रतिपक्षभूत प्रत्यय को एक विध कहते हैं। बहु और बहु एक की बात हुई अभी, बहुविध की बात बताई, अनेक प्रकार, अनेक जातियां, अब एक विध है, एक प्रकार के एक विध कहते हैं। इसका अंतर्भाव एक प्रत्यय में नहीं हो सकता। एक नाम का जो मति ज्ञान का भेद है वो जुदा है, और एक विध जुदा है। एक यानी सिंगल, हमने एक गाय को देखा, और बहुत सारी गायें हैं, परंतु वो एक ही जाति की अनेक गाय हो सकती है, वो एक विध है, एक प्रकार के, क्योंकि वह एक प्रत्यय व्यक्तिगत एकता में संबद्ध रहने वाला है। व्यक्तिगत एकता में वो एक सिंगल चीज है, एक वस्तु है, और यह अनेक व्यक्तियों से संबद्ध एक जाति में रहने वाला है। यानी ये अनेक पदार्थ है कहो, अनेक व्यक्तियां है कहो, परंतु वो एक प्रकार की है, एक जाति की है। क्षिप्र वृत्ति अर्थात शीघ्रता से वस्तु को ग्रहण करने वाला प्रत्यय क्षिप्र कहा जाता है। यानी जल्दी जल्दी, क्षिप्र ने बहुत फास्ट, नवीन सकोरों में रहने वाले जल के समान धीरे वस्तु को ग्रहण करने वाला अक्षिप्र प्रत्यय है। धीरे धीरे जो सकोरा, समझते हैं मिट्टी का बर्तन छोटा होता है ना, वो आप गए होते शिखर जी वगैरह उधर, वो चाय पीने को, पानी पीने के, वो कुल्लड़ कहते उसको, क्या कहते, सकोरा भी कहते, तो उसमें पानी डालो तो कहे धीरे 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 उसमें वो गीला होते, ऐसा ही ये ज्ञान भी बहुत स्लोली ग्रहण करता है, उसको अक्षिप्र कहते हैं। वस्तु के वो सात शब्द निकालकर एक शब्द डालना, ब्रह्म। वस्तु के एक देश का अवलंबन चाहिए, वस्तु के सात देश का अवलंबन नहीं। वस्तु के ऊपर लिखा है, देखो प्राकृत में नीचे से दूसरी लाइन, वस्तु एक देशम अवलंब्य, आगे भी लिखा ना, वस्तु ग्रहम वस्तु एक देशम, तो ये कहते हैं वस्तु के एक देश का अवलंबन करके, एक देश है ना पार्शल, उसका एक छोटा भाग, पूरी वस्तु नहीं जानी, उसका कोई अंग जाना हमने, तो वस्तु के एक देश का अवलंबन करके उसके आधार से पूर्ण रूप से वस्तु को ग्रहण करने वाला, तथा वस्तु के एक देश अथवा समस्त वस्तु का अवलंबन करके वहां अविद्यमान अन्य वस्तु को विषय करने वाला भी अनिसृत प्रत्यय। क्या कहना चाहते हैं? वस्तु के ही एक अंश को ग्रहण किया, ग्रहण किया ने जाना और पूरी वस्तु जाने, या वस्तु के एक या पूरे अंश को जानकर हमने दूसरी वस्तु को जाना, इसे दोनों ही प्रकार का अनिश्रुत प्रत्यय है। यह प्रत्यय असिद्ध नहीं है, अभी उसका उदाहरण देंगे, क्योंकि घट के अर्वाक भाग का अवलंबन करके कहीं घट प्रत्यय की उत्पत्ति पाई जाती है। यानी पूरा घट कहाँ हमने देखा, उसका सामने वाला ही भाग देखा, तो हमें पूरा घट कैसे हमको पता है ना, ये उसको अर्वाक यानी सामने वाला भाग देखा और हमने पूरे घट का ज्ञान हो गया। कहीं पर निकाल क्यों दिया, एक मिनट, वस्तु एक देशम समस्तम अवलंब्य तत्र असन्निहित वस्तु अंतर विषय अपि अनिश्रित प्रत्यय। इसको हम पढ़ेंगे नीचे चौथे नंबर के फुटनोट में से, नच अयम असिद्ध घटार वा भाग भागम अवलंब्य क्वचित घट प्रत्यय से उत्पत्ति उपलम्भात क्वचित वा क्वचित अर्वा भाग एक देशम अवलंब्य तद उत्पत्ति उपलम्भात क्वचित गौ इव गवयव इति अन्यथा वा। हाँ, ये यहाँ वाक्य नहीं चाहिए, पेज नंबर 152, क्योंकि ये जो गाय के समान गवय होता है आगे नेक्स्ट वाक्य में आने वाली बात है, तो यहाँ निकालने की इतना है, वो कहीं पर लिखा है ना, कहीं पर रखो गाय के समान गवय होता है, इतना निकाल दो। समझ में आया क्या निकालना? अब मैं हिंदी पढ़ती हूँ, नीचे से दूसरी लाइन पहले पढ़ूंगी, क्योंकि घट के अर्वाक भाग का अवलंबन करके, अर्वाक भाग है ना, हाँ, कहीं घट प्रत्यय की उत्पत्ति पाई जाए, हाँ, अर्वाक भाग में सामने वाला ना, कहीं पर अर्वाक भाग के एकदेश का अवलंबन करके उक्त प्रत्यय की उत्पत्ति पाई जाती है, यानी पूरा अर्वाक भाग भी नहीं, उसका एक भाग, कहीं पर गाय के समान गवय होता है, वहां वो गाय के समान गवय होता है वो हमने निकाल दिया था, वो अभी यहाँ इस वाक्य में लिखा हुआ है इसलिए वहां से निकाला। कहीं पर गाय के समान गवय होता है इस प्रकार अथवा अन्य प्रकार से एक वस्तु का अवलंबन करके वहां समीप में न रहने वाली अन्य वस्तु को विषय करने वाले प्रत्यय की उत्पत्ति पाई जाती है। हमने वहां गाय के समान गवय होता है, गवय नाम का एक प्राणी है, वो गाय के समान ही है इसलिए उसको गाय के समान गवय होता है ऐसा कह दिया। या बच्चों को समझाने के लिए हम कहें वो बिल्ली को देखते, अरे ये शेर के शेर जैसी दिखती है, यानी उस पदार्थ के द्वारा अन्य पदार्थ को समझना या जानना। कहीं पर अर्वाक भाग के ग्रहण काल में ही परभाग का ग्रहण पाया जाता है, परभाग है ना दूसरी ओर का, अर्वाक भाग है ना अपन अपनी ओर का। हमने अभी ये बॉक्स को देखा तो सामने वाला पार्ट दिख रहा है, पीछे वाला कहाँ दिखा हमको, इस तरह से। और यह असिद्ध भी नहीं, यानी प्रसिद्ध है, क्योंकि अन्यथा वस्तु विषय प्रत्यय की उत्पत्ति बन नहीं सकती। अगर ऐसा नहीं मानेंगे हम तो हमने वो वस्तु को पहचाना ही नहीं, हमने थोड़ा भाग देखते हैं तो पूरी वस्तु को हमको आइडिया आ जाता है कि कौन सी वस्तु हम पहचान लेते हैं, वहां पर पूरी वस्तु तो वहां से नहीं दिख रही है। कभी कभी ऐसा भी है ना, इसे थोड़ा सा इसे पार दिखा हमने तो पहचान लिया ये कौन सी वस्तु है। अभी इसी को फुटनोट में देखेंगे, चार नंबर का पेज नंबर 152 का चौथा नंबर का फुटनोट, वस्तु एक देशस्य आलंबनी भूतस्य ग्रहण काले, यानी वस्तु के एक देश के अवलंबन आलंबन लिया है उसका ग्रहण काल ने उसको जानने के समय में, एक वस्तु प्रतिपत्ति ही यानी एक वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तु एक देश प्रतिपत्ति काल एव वा दृष्टांत मुखेन अन्यथा वा अनवलंबित वस्तु प्रतिपत्ति ही अनुसंधान प्रत्यय प्रत्यभिज्ञान ज्ञाना प्रत्ययश्च अनिसृत प्रत्यय। ये प्रत्यभिज्ञान जिसको कहेंगे, अभी हमने देखा ना, एक वस्तु को जानकर हमें दूसरी वस्तु समझ में आ गई, उसको भी प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। या सामने वाली किसी वस्तु की अवस्था देखकर उसी की पूर्व अवस्था का भी ज्ञान होता है। हम कहते हैं ना, किसी बालक को देखा हमने 5 साल के बाद, अरे तू इतना बड़ा हो गया, वो कौन है वो तो पहचान लिया, और उसमें क्या डिफरेंस है वो भी पहचान लिया, यानी उसकी पूर्व अवस्था और वर्तमान अवस्था इनका हमको ज्ञान हुआ। कभी कभी कोई चीज ऐसी चीज हमारे घर में है, ये तो लाल है, हमारी वो पीली है, ऐसा भी होता है ना ज्ञान, उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। यही यहाँ पर उदाहरण से बताया, देखो इसको अनिसृत प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय ने ज्ञान, अनिसृत ज्ञान। सुविशुद्धि श्रोत्रादि परिणामात साकल्येन अनुच्चारितस्य ग्रहणात अनिसृतम अवगृह्णाति। यानी जो हमने कर्णेन्द्रिय के द्वारा उसका अनुच्चारित ऐसे अर्थों को भी हम ग्रहण कर सकते, जो नहीं बताया उसको भी बताए, थोड़ा उच्चार किया है जो नहीं बताया उसको भी हम जान लेते हैं, उसको भी यहाँ समझ लेना, उसको अनिसृत कहते हैं। निसृतम प्रतीतम, निसृत तो समझ में आता है, अनिसृत ही समझाना पड़ता है कि नहीं है और हमने कैसे जान लिया। तमेव शब्दन स्वरूपेण यदा जानाति न लिंग परिग्रहात तदा अनिसृत अवग्रह। यानी अलग अलग इंद्रियों के द्वारा ये क्या होता है अनिसृत उसको बता रहे, सुनने की अपेक्षा बता दिया। अब शब्द की बात कहते, तमेव शब्दम स्वरूपेण यदा जानाति न लिंग परिग्रह तदा अनिसृत अवग्रह। यानी उसी को शब्द स्वरूप से जान लेते हैं। लिंग परिग्रहणे तु अवगच्छतो निसृत अवग्रह। लिंग यानी कोई चिन्ह के द्वारा जिसको जानने में आता है उसको तो निसृत कहेंगे, अथवा परधर्म ही विमर्शितम तद्ग्रहणम तन्मिश्र तन्मिश्रितावग्रह। अभी उसमें मिश्रितावग्रह समझ लें। यत् पुनः परधर्म ही अमिश्रितस्य ग्रहणम तद् अमिश्रित अवग्रहम। ये उसके उन्होंने अलग अलग भेद किए हैं। अब यहाँ हम पढ़ते 153 पेज पर। अभी तक हमने बहु और एक, बहुविध और एक विध, फिर अभी ये क्षिप्र अक्षिप्र देखा, अनिसृत और निसृत की बात यहाँ चल रही थी। पेज नंबर 153, उसमें 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन हमने देखा था कि अर्वाग भाग और परभाग एट टाइम भी जान सकते हैं किसी का। किसी का अर्वाग भाग का ज्ञान के द्वारा हम परभाग को जानकर पूरी वस्तु को जानते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, तथा अर्वाग भाग मात्र वस्तु हो नहीं सकती। यानी उसके केवल, हम कहें हमने फ्रंट व्यू देखा, पर केवल फ्रंट ही वस्तु नहीं है, उसके सभी थ्री डायमेंशनल वस्तु है, हमने देखा ही उसके एक बाजू देखी है, उतनी मात्र वस्तु नहीं होती, क्योंकि उतने मात्र से अर्थक्रियाकारित्व नहीं पाया जाता। अर्थक्रियाकारित्व यानी वो पूरी वस्तु का जो कार्य हो रहा है वो तो नहीं हो सकता। कहीं पर एक वर्ण के श्रवण काल में ही, वर्ण यानी यहाँ अक्षर समझना हो, वर्ण यानी वो रंग नहीं समझना, शब्द नहीं अक्षर भी, वर्ण वर्ण क्योंकि शब्द के लिए पद या शब्द कहेंगे, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, वर्णमाला है ना, हाँ, जिसको स्वर और व्यंजन मिलकर वो वर्ण होते हैं सारे। एक वर्ण के श्रवण काल में ही आगे उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को विषय करने वाले प्रत्येक उत्पत्ति पाई जाती है। मराठी में एक कहावत है, ता से ताक भात, यानी हमने एक ही अक्षर बोला तो उसके आगे जो उसका फुल नाम है या जो कुछ कहना चाहते वो सब ख्याल में आता है। ऐसा भी ज्ञान का ही वो भेद है। कहीं पर अपने अभ्यस्त प्रदेश में एक स्पर्श के ग्रहण काल में ही अन्य स्पर्श विशिष्ट उस वस्तु के प्रदेशांतरों का ग्रहण होता है। यानी हमने किसी चीज को छुआ और उसकी पूरी वस्तु का ज्ञान हो जाता है, अन्य स्पर्श का भी कहो या अन्य पूरी वस्तु का भी होता है। मेडिकल में हम ऐसे चेक करते हैं ना, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, तो ऐसे एक टेस्ट होती है, कोई ऐसे हमेशा जो हमें पहचान वाली चीजें देते हैं हाथ में वगैरह, आंखें बंद करके उसको पहचानने को बोलते हैं। तो वस्तु को छूकर उसकी वस्तु को भी पहचाना जाता है, उसको एक देश को छूकर भी पूरी वस्तु का ग्रहण हो जाता है, यही कहते हैं यहाँ पर। तथा कहीं पर एक रस के ग्रहण काल में ही उन प्रदेशों में नहीं रहने वाले रसांतर से विशिष्ट वस्तु का ग्रहण होता है, यही है समझना। उसमें एक एक बाजू को हमने चखा परंतु वो पूरी वस्तु पहचान ली उसके द्वारा। दूसरे आचार्य निश्रुत ऐसा पढ़ते हैं, उनके द्वारा उपमा प्रत्यय एक ही संग्रहित होगा अतः वह इष्ट नहीं है। इसका प्रतिपक्षभूत निश्रुत प्रत्यय है। या निश्रुत ऐसा पढ़ते क्यों लिखा, निश्रुतमिति अपरे पठन्ति। इनटू इन्वर्टेड किया था हमने, हाँ ऐसा पढ़ते वाला इन्वर्टेड निकाल दो और निश्रुत के लिए वो इन्वर्टेड लगा लो। ब्रह्मा पुराने पुस्तकों में दूसरे आचार्य निश्रुत ऐसा पढ़ते हैं, यानी इसी को वो निश्रुत कहते हैं, परंतु उसमें वो केवल उपमा नाम का ही वो भेद इष्ट संग्रहित होता है, इसलिए वो मानना ठीक नहीं है। यानी अभी तक जो वर्णन किया है वो अनिश्रुत का भेद है, निश्रुत का नहीं है, और इसका प्रतिपक्षभूत है उसको निश्रुत कहेंगे, क्योंकि कहीं पर किसी काल में आलंबनी भूत वस्तु के एक देश में उतने ही ज्ञान का अस्तित्व पाया जाता है। निश्रुत यानी जितना हमने एक देश जाना उतना ही ज्ञान उसको होता है, पूरी वस्तु का नहीं होता है, उसको निश्रुत कहा। देखो इंद्रिय के प्रतिनियत गुण से विशिष्ट वस्तु, इसका अर्थ क्या मालूम है मनीषा? पांच इंद्रिया है तो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा मीठा समझेगा का खट्टा समझेगा? नहीं समझेगा। अच्छा हाँ, यानी स्पर्शन इंद्रिय का विषय निश्चित है, वो क्या समझ सकता है, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम, इतना ही वो जानेगा। यानी उसका विषय प्रतिनियत यानी निश्चित है। ये क्या कहते हैं, इंद्रिय के प्रतिनियत गुण से विशिष्ट वस्तु, यानी चक्षु इंद्रिय के प्रतिनियत गुण से विशिष्ट वस्तु क्या है, तो रूप वर्ण उसको जान सकती है। उसके ग्रहण काल में यानी उसके गान जानने के काल में ही उस इंद्रिय के अप्रतिनियत गुण से विशिष्ट उस वस्तु का ग्रहण जिससे होता है वह अनुक्त प्रत्यय है। अभी जो हमने देखा, अभी जो जाना है कि यानी एक इंद्रिय के द्वारा अपने विषय को जानने के काल में ही जो उस इंद्रिय का विषय नहीं है ऐसे को भी जान लेना, क्योंकि एक ही चीज में स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो वो चीज का हमने वर्ण देखा, आम का वर्ण देखा और वो मीठा ऐसा जान लिया, ख्याल में आता है ना? या किसी का गंध देखा, यानी तो हमने तो दही बना था उसका गंध देखा, हाँ नहीं ये खट्टा होना चाहिए, यानी हमने तो केवल घ्राण इंद्रिय से जाना और अन्य इंद्रियों का जो विषय है उसको भी जान लिया, इस तरह से कहते हैं उसको। हाँ वो तो किसी का विशिष्ट क्षोभ हो सकता है, उसकी बात है। यहाँ तो कहते इंद्रिय के प्रतिनियत गुण से विशिष्ट वस्तु के ग्रहण काल में, इसका अर्थ है इंद्रिया अपने विषय को जानने के काल में उसी समय उस इंद्रिय के अप्रतिनियत गुण से विशिष्ट वस्तु, यानी जो उस इंद्रिय के द्वारा नहीं जानी जाती है वो उसके जो अन्य गुण है, उस वस्तु का ग्रहण जिससे होता है वह अनुक्त प्रत्यय है, नहीं बताया हुआ। ये नहीं बताया हुआ केवल श्रोत्रेंद्रिय में नहीं समझना, सभी इंद्रियों के बारे में अनुक्त विषय हो सकता है। यह असिद्ध भी नहीं है क्योंकि चक्षु से लवण शक्कर व खांड के ग्रहण काल में ही कभी उनके रस का ज्ञान हो जाता है, यहाँ दही का भी वर्णन है, दही के गंध के ग्रहण काल में ही उसके रस का ज्ञान हो जाता है। समझ में आई ना बात, यानी हमने लवण यानी वो सॉल्ट देखे, शक्कर या खांड, शक्कर वो तो पीसी हुई शक्कर कहते हैं, खांड उनको हम जिसको खड़ी शक्कर कहते उसको खांड भी कहते हैं, उसके ग्रहण काल में उसको जानते समय में उसके रस का भी ज्ञान होता है, वो देखकर भी उसके रस का ज्ञान होता है हमको, क्योंकि पहले बताए वो अभ्यस्त है ना, हम उस चीजें हमने देखी हुई है जानी हुई है। दीपक के रूप के ग्रहण काल में ही कभी उसके स्पर्श का ग्रहण हो जाता है, क्योंकि दीपक को तो हम देखते हैं परंतु वो उष्ण है उसका हमको ज्ञान हो जाता है। तथा शब्द के ग्रहण काल में ही संस्कार युक्त किसी पुरुष के उसके रसादि विषयक प्रत्यय की उत्पत्ति भी पाई जाती है, इसके प्रतिपक्ष रूप उक्त प्रत्यय। अभी इसका अर्थ समझ में आता है लक्ष्मी जी, शब्द के ग्रहण काल में ही संस्कार युक्त पुरुष, संस्कार युक्त किसको कहना, संस्कार का अर्थ होता है जाना हुआ, जो धारणा तक पहुंचा हुआ संस्कार उसको संस्कार कहते हैं, और वो धारा संस्कार की चलती है। तो इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं, शब्द के ग्रहण काल में ही संस्कार युक्त किसी पुरुष के उसके रसादि विषयक प्रत्यय की उत्पत्ति भी पाई जाती है। नहीं 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 उसकी उत्पत्ति की उत्पत्ति उसका ज्ञान वो भी है बराबर, जैसे हमने इमली कहा तो इमली इमली शब्द सुना वो तो उसका खट्टा स्वाद एकदम ख्याल में आ गया, जाना हमने शब्दों से, वो हमने उसके रस को जान लिया क्योंकि संस्कार युक्त है, क्योंकि हमने वो चीजें जानी हुई है पहले, इसलिए वो कहते ही उसका ज्ञान उसको वो भी हमारे ज्ञान में आ जाती है बात। इसके प्रतिपक्ष रूप उक्त प्रत्यय, वो अनुक्त की बात की, अनुक्त किस लिए, आपने कहा ना इमली तो उक्त है शब्द बताए ना, नहीं इमली ये तो केवल हमने श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा सुना, पर रसनेन्द्रिय का ज्ञान हुआ वो अनुक्त वाला कहलाएगा। अब शंकाकार पूछते हैं कि निःसृत और उक्त में क्या भेद है, क्योंकि निःसृत यानी जो खुली पूरी चीज है और उक्त में बताई हुई है उसमें क्या अंतर है। समाधान, नहीं क्योंकि उक्त प्रत्यय निःसृत और अनिश्रुत दोनों रूप है, अतः उसका निःसृत के साथ एकत्व होने का विरोध है। अभी ध्रुव और अध्रुव की बात है, यह वही है वह मैं ही हूं, इस प्रकार का प्रत्यय ध्रुव कहलाता है, यानी ध्रुव ने वही के वही चीज है ना जो हम जानते क्या, नहीं ये यही बात है जो हमने कल लिखी थी यही चीज है वो, उसको क्या कहेंगे ध्रुव। इसका प्रतिपक्ष भूत प्रत्यय अध्रुव है, शंकाकार पूछते हैं ये ध्रुव अध्रुव की बात हम जरा नीचे देखते हैं। अध्रुव की बात बताई है, ध्रुव और अध्रुव तीन और चार पढ़ लेते हैं। नित्यत्व विशिष्ट स्तंभादि प्रत्यय स्थिर, स्थिर जो है वो खंबा वगैरह वो कैसे सिर है, वो नित्य है। सक्लेश नहीं, संक्लेश होना चाहिए ना। संक्लेश परिणाम निरुत्सुकस्य, ये प्रश्न चिन्ह लगाया। यथानुरूप श्रोत्रेन्द्रियावरण क्षोभशमादि परिणाम कारणा अवस्थितत्वाद यथा प्राथमिकम शब्द ग्रहणम तथा अवस्थितम एव शब्दम अवगृह्णाति न ऊनम न नौनम न अभ्यधिकम। ये उन्होंने अलग रूप से बताया कि वैसा का वैसा ग्रहण होता है, हीनाधिक नहीं होता उसको यानी ध्रुव कहा है। नीचे का देखते हैं, ये नंदी सूत्र कौन सा है उन्होंने, ये धवला की बात पढ़ेंगे हम। धवला की है ना, विद्युत प्रदीप ज्वालादौ उत्पाद विनाश विशिष्ट वस्तु प्रत्यय अध्रुव है, यानी बिजली है, दीपक है, ज्वाला है, उसमें उत्पाद विनाश विशिष्ट वस्तु प्रत्यय है, यानी उसका उत्पाद यानी हीना दिखता को जानने वाला है वो अध्रुव है। उत्पाद व्यय द्रव्य विशिष्ट वस्तु प्रत्ययोपि अध्रुव ध्रुवात् पृथक भूतत्वात्, यानी उत्पाद व्यय द्रव्य विशिष्ट वस्तु प्रत्यय जो है वो भी अध्रुव है क्यों, ध्रुव से पृथक है इसलिए। पौनः पुण्येन संक्लेश विशुद्धि परिणाम कारण कारणापेक्षस्य आत्मनः यथानुरूप परिणामोपात्त श्रोत्रेन्द्रिय सानिध्येपि तदावरणस्य एषद ईषद आविर्भावात्। यहाँ क्या कहते, जैसे ज्ञान का ही हीनाधिक होता है ना, क्षोभशम कम ज्यादा होता है तो उसका जानना भी कम ज्यादा हो जाता है, इसलिए भी उसको अध्रुव कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। शंकाकार पूछ रहे 154 लास्ट लाइन, मन से अनुक्त का क्या विषय है। समाधान, अदृष्ट और अश्रुत पदार्थ उसका विषय है, नहीं देखा हुआ नहीं सुना हुआ ये उसका विषय है, और उसका वहां रहना असिद्ध नहीं है, यानी बिना सुने भी ज्ञान हो सकता है किसी का, बिना देखे भी, क्योंकि उपदेश के बिना अन्यथा द्वादशांग श्रुत का ज्ञान नहीं बन सकता, अतएव उसका अदृष्ट व अश्रुत पदार्थ में रहना सिद्ध है। हमने देखा है उपदेश के बिना भी वो जानने की शक्ति हमने देखी थी ना उस दिन, वो सारे बुद्धि रिद्धियों की बात देखी थी हमने, उसमें ये बात आई थी कि उन्होंने किसी से पढ़कर यानी सुनकर ग्रहण नहीं किया है, वो उसके ऐसा एक क्षोभशम उत्पन्न हुआ है संयम आदि के निमित्त से, तो उसको हम कहेंगे मन का अनुक्त का विषय, नहीं बताया हुआ उसने जान लिया है। अब ये भेद उच्चारण करके दिखलाए जाते हैं, वह इस प्रकार से चक्षु से बहुत का अवग्रह करता है, चक्षु से एक का अवग्रह करता है, चक्षु से बहुत प्रकार का अवग्रह करता है, चक्षु से एक प्रकार का अवग्रह करता है, यानी चक्षु इंद्रिय के ऊपर बहु एक बहुविध एक विध आदि सभी भेद करके 12 भेद बता रहे। चक्षु से क्षिप्र का अवग्रह करता है, चक्षु से अक्षिप्र का अवग्रह करता है, चक्षु से अनिसृत का अवग्रह करता है, चक्षु से निसृत का अवग्रह करता है, चक्षु से अनुक्त का अवग्रह करता है, चक्षु से उक्त का अवग्रह करता है, चक्षु से ध्रुव का अवग्रह करता है, और चक्षु से अध्रुव का अवग्रह करता है। इस प्रकार चक्षु इंद्रियावग्रह, अवग्रह की बात है ना, यहाँ अवग्रह के भेद है ये, ये आगे चलेगी भेद 12 प्रकार का है, ये 12 प्रकार याद है। देखो 6 आयत करना है तो उसके विरुद्ध दूसरे, इसे बहुविध क्षिप्र अनिसृत अनुक्त और अध्रुव या उक्त अध्रुव कोई भी ले लो, उसका अपोजिट लेना है उसके साथ, वो 6 और 6 12 होते हैं। ये किसके भेद देखे, अवग्रह के, चक्षु इंद्रियों के अवग्रह के, ये 12 ये विषय की अपेक्षा ज्ञान के भेद बताए, ज्ञान को ही उसका नाम दिया जाता है, एक प्रत्यय कहा उसको, प्रत्यय ने वो ज्ञान का भेद हुआ। अब कहते इहा अवाय और धारणा इनमें से प्रत्येक प्रत्यय नहीं चाहिए, वो प्रत्येक चक्षु के निमित्त से 12 प्रकार है। जैसे अवग्रह के 12 प्रकार, वैसे इहा के 12 प्रकार, अवाय के 12 प्रकार, धारणा के 12। जैसे ने जो हमारा चक्षु इंद्रिय का विषय था उसके बारे में अवग्रह हुआ, उसी की इहा हुई, अधिक जानने की उत्सुकता से उसके निर्णय की ओर निर्णय तक पहुँचे, उसी का अवाय हुआ उसी चीज़ संबंधी, और वो धारणा तक पहुँचे, ये उसी हर एक में 12 भेद हो गए। वह इस प्रकार से बहुत का इहा करता है, एक का इहा करता है, बहुविध का इहा करता है, एक विध का इहा करता है, क्षिप्र का इहा करता है, अक्षिप्र का इहा करता है, निसृत का इहा करता है, अनिसृत का इहा करता है, उक्त का इहा करता है, अनुक्त का इहा करता है, ध्रुव का इहा करता है, अध्रुव का इहा करता है। इस प्रकार ये इहा के भेद है। अब अवाय के, अब चक्षु से ऐसा शब्द डालो इसमें, अब चक्षु से बहुत के आगे पहले, ये हम समझने के लिए जैसे ऊपर बताया था ना, एक्चुअली चक्षु के निमित्त से उन्होंने बहुत का इहा करता है वैसे ही लिया है, ये समझने के लिए हमने डाला था कि बहुत का अवाय करता है, एक का अवाय करता है, यानी वो चक्षु से ही सब बातें चल रही है, ये समझने के लिए हमने चक्षु से शब्द डाला था। बहुविध का अवाय करता है, एक विध का अवाय करता है, क्षिप्र का अवाय करता है, अक्षिप्र का अवाय करता है, पेज नंबर 156। निसृत का अवाय करता है, अनिसृत का अवाय करता है, उक्त का अवाय करता है, अनुक्त का अवाय करता है, ध्रुव का अवाय करता है, अध्रुव का अवाय करता है। इस प्रकार ये अवाय के भेद है। अब धारणा के भेद, चक्षु संबंधी धारणा के भेद है। बहुत को धारण करता है, यानी हमको समझना है चक्षु से बहुत को धारण करता है। धारण करना यानी कुछ जैसे वस्त्र धारण करते हैं उसकी बात नहीं, वो धारणा करना, उसको धारण करता है, एक को धारण करता है। देखो ये ग्रहण भी ज्ञान के भी अर्थ में है, और धारण यानी वो पक्का हो गया, ज्ञान पक्का हो गया तो उसको धारण कह रहे हैं। तो बहुत को धारण करता है, एक को धारण करता है, बहुविध को धारण करता है, एक विध को धारण करता है, क्षिप्र को धारण करता है, अक्षिप्र को धारण करता है, निसृत को धारण करता है, अनिसृत को धारण कहता है, उक्त को धारण करता है, अनुक्त को धारण करता है, ध्रुव को धारण करता है, अध्रुव को धारण करता है। इस प्रकार चक्षु इंद्रिय के निमित्त से 48 मति ज्ञान के भेद होते हैं, यानी 12 होते ना, और अवग्रह यहाँ अवाय और धारणा, 12 × 4 48 हो गए। अवग्रह यहाँ अवाय धारणा 4 × 12। अब मन के निमित्त से भी इतने ही भेद होते हैं, क्योंकि इन दोनों के व्यंजनावग्रह नहीं होता। अब व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह किसको कहना, वो बात आएगी, वो प्रश्नोत्तर के आएगी। इतना ही समझना उनको, डायरेक्ट अवग्रह यानी अर्थावग्रह ही होता है, व्यंजनावग्रह नहीं होता। किसके द्वारा नहीं होता? चक्षु और मन के द्वारा। बाकी जो है उनमें व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह, फिर यहाँ अवाय धारणा, यानी उनके अवग्रह के 2 भेद, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। शेष 4 इंद्रियों में प्रत्येक के निमित्त से 60 भंग होते हैं। यहाँ तो अवग्रह यहाँ अवाय धारणा, यानी अर्थावग्रह यहाँ अवाय धारणा, और बाकी में पहले व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह, फिर यहाँ अवाय और धारणा, 5 12 × 5 60 भेद हो गए उनके, और इनके 48 हो गए। क्योंकि उनके व्यंजनावग्रह होता है। अब व्यंजनावग्रह क्या है उसको देखेंगे हम। वे सब एकत्रित होकर 336 यानी चक्षु और मन के 48-48 और बाकी चार इंद्रियों के 60-60 इसे 336 भेद होते हैं। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, हमने 12 देखे ना, और 12 है वो अवग्रही, वो 48 हो गए, और वो 6 के ऊपर लगा लो, नहीं नहीं 48 इंटू 6 करो, और ये इसके 4 के एक्स्ट्रा उसमें मिला दो, ऐसा भी कर सकते, कोई भी हिसाब का एक ही तरीका है। शंका, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं, क्योंकि इनमें व्यंजनावग्रह नहीं होता कहा, और बाकी में पहले अर्थावग्रह होकर बाद में व्यंजनावग्रह होता ये कहा, तो उसका अर्थ महे मालूम नहीं है शंकाकार को। उसका समाधान, अप्राप्त पदार्थ के ग्रहण को अर्थावग्रह और प्राप्त पदार्थ के ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं। ऐसा है ना, चक्षु के द्वारा वो तो कांटेक्ट में आने वाले को जान लेता है, ऐसा उसका एक अर्थ होता है। दूसरा एक अर्थ होता है कि प्राप्त वो तो अव्यक्त हो जाता है, और ये अव्यक्त ग्रहण उसको भी कहते हैं अप्राप्त। दो प्रकार से उसके अर्थ होते हैं, जैसे जीव कांड में इसके संबंध में चर्चा की है कि तत्वार सूत्र में ऐसा लिखा, यहाँ ऐसा लिखा, उसके दो अर्थ कैसे, तो उसने विस्तार से पंडित रमन जी ने बताया भी उसको। तो यहाँ हम यहाँ से पढ़ेंगे, पहले देखो, स्पष्ट ग्रहण को अर्थावग्रह और अस्पष्ट ग्रहण को व्यंजनावग्रह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्पष्ट ग्रहण और अस्पष्ट ग्रहण तो चक्षु और मन के भी रहता है। अतः ऐसा मानने पर उन दोनों को भी व्यंजनावग्रह के अस्तित्व का प्रसंग आवेगा, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि चक्षु और मन से व्यंजन पदार्थ का अवग्रह नहीं होता। इस प्रकार सूत्र द्वारा उन दोनों के व्यंजनावग्रह का प्रतिषेध किया गया है। यदि कहो, हम फिर उस पर आते हैं, यदि कहो कि धीरे धीरे जो ग्रहण होता है वह व्यंजनावग्रह है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के ग्रहण का अस्तित्व चक्षु और मन के भी होता है, अतः उनके भी व्यंजनावग्रह के रहने का प्रसंग आवेगा, और उन दोनों में शनैर ग्रहण, शनै ने स्लोली धीरे धीरे ग्रहण असिद्ध नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से अक्षिप्र भंग का अभाव होने पर चक्षु निमित्तक 48 मतिज्ञान के भेदों के अभाव का प्रसंग आवेगा। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अप्राप्त पदार्थ के ग्रहण को अर्थावग्रह और प्राप्त पदार्थ के ग्रहण को व्यंजनावग्रह। यहाँ ये जो इंद्रिया जो जानती है, कौन सी, स्पर्शनेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय है और कर्णेन्द्रिय, वो प्राप्त पदार्थों को यानी उनका विषय और वो इंद्रिया वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, प्राप्त होते हैं, तब वो जानता है, ऐसा उसका अर्थ उन्होंने किया है। हाँ है ना, बहुत जगह इसकी चर्चा है, और उसमें ये भी आता है ना, अव्यक्त को ग्रहण उसको भी व्यंजनावग्रह कहते हैं, और बाद में अर्थावग्रह होता है, यानी वो ग्रहण तो कुछ हो गया परंतु वो हमारे ख्याल में नहीं आया, ऐसा भी होता है, परंतु उनको यहाँ उन्होंने निषेध कर दिया। जैसे हम देखते हैं किचन में हम काम कर रहे हैं और वो तेल उबलते उबलते एक छींटा इधर आके गिर गया, दिख रहा है हमको, तो दिखने में डायरेक्ट ज्ञान हुआ, परंतु वो स्पर्शन के द्वारा वो जलन महसूस होने में थोड़ा समय चला जाता है, तो उसमें जो हो गया है वो अव्यक्त ग्रहण हुआ है इसको कहेंगे, और इनकी तरफ से ऐसा है कि वो तो कांटेक्ट हुआ और वो जानने में आया, यानी उसके लिए कांटेक्ट जरूरी है, ये उसका भी अर्थ है। दो प्रकार के इसका अर्थ होता है, यानी वो भले भी अव्यक्त है परंतु उस वहां पर भी कांटेक्ट तो जरूरी है ही है, शुरुआत में अव्यक्त होता है और बाद में वही व्यक्त होता है, यानी उसका टोटल निषेध तो नहीं कर रहे हैं, परंतु स्टार्टिंग में वो अव्यक्त हो, फिर वो व्यक्त हो जाता है। अब शंका, पेज नंबर 157। श्रोत्रादि चार इंद्रियों में अर्थावग्रह नहीं है, क्योंकि उनमें प्राप्त ही पदार्थ का ग्रहण पाया जाता है। अर्थावग्रह नहीं है प्रश्न, परंतु उन्हें ऐसा स्टेटमेंट क्यों करे? वो तो व्यंजनावग्रह के बाद अर्थावग्रह होता ही है ना उनके, तो इनको कहते उसमें अर्थावग्रह ही नहीं होता, क्योंकि उनमें प्राप्त ही पदार्थ का ग्रहण पाया जाता है। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि वनस्पतियों में अप्राप्त अर्थ का ग्रहण पाया जाता है। शंका, वह भी कहां से जाना जाता है? यानी दूर से भी जानती है, प्राप्त नहीं हुआ तो दूर से भी जानती है, ऐसा भी उसका अर्थ होता है। समाधान, क्योंकि दूरस्थ निधि खाद्य आदि को लक्ष्य कर प्रारोह यानी शाखा का छोड़ना अन्यथा बन नहीं सकता। यानी वनस्पति के लिए जो पानी वगैरह, पानी की तरफ उसके जो रूट्स बढ़ते हैं, या सूर्य प्रकाश की तरफ उनका पत्ते वगैरह बढ़ते हैं, वो अन्यथा नहीं हो सकता। एक्चुअली धूप की बात नहीं कर सकती, वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, परंतु पानी तो दूर है ना, तो उसकी ओर यहाँ बढ़ते हैं। और वो इंद्रियों के विषय भी कितने दूर से जान सकते हैं, उसके भी हमने देखे थे वो जीव कांड में भी, वो एक इंद्रियों का विषय कितना दूर से वो जान सकते हैं, द्विंद्रिय के लिए स्पर्शन इंद्रिय का, रसन इंद्रिय का विषय कितने दूर से जानते हैं, मैक्सिमम उत्कृष्ट उसके डिस्टेंस, ये भी बताएंगे अभी यहाँ पर। देखो ऊपर 48 को पढ़ेंगे, चत्तारि धन से याहिम चौसठ सयम चतह ये धनुहाणम पासे रसे यगंधे दुगुणा दुगुणा असन्निति। 400 धनुष, 64 धनुष तथा 100 धनुष प्रमाण क्रम से एकेंद्रिय द्विंद्रिय और तीन्द्रिय जीवों का स्पर्श रस एवं गंध विषयक क्षेत्र है। आगे असंगी पर्यंत यह विषयक क्षेत्र दूना दूना होता गया। देखो स्पर्शन इंद्रिय किसके किसके होगा? सबके है, एक इंद्रिय से। अभी संगी पंचेंद्र को दूर छोड़ दो, असंगी तक हम कहेंगे, तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय उन्होंने एक इंद्रिय का बताया, और आगे दुगुना दुगुना होता है। तो यहाँ कहा 400 धनुष स्पर्श का विषय है, 64 धनुष ये रसनेन्द्रिय का, द्विंद्रिय का विषय, क्योंकि एकेंद्रिय को तो होता ही नहीं है, जिसके होता है वहां से शुरू करेंगे, तो द्विंद्रिय के 64 है, उसके आगे दो गुना दो गुना दो गुना होगा, 64 है, 128 है, इस तरह से। यानी तो 400 धनुष हमने देखा था स्पर्शन इंद्रिय का, तो 400, 800, 1600 इस तरह से बढ़ेगा। देखो 464 तथा 100 धनुष प्रमाण, 100 धनुष प्रमाण ये किसका विषय होगा? घ्राण इंद्रिय का, तो तीन इंद्रियों का अर्लीएस्ट होगा ना, तो तीन इंद्रियों को 100 धनुष, चतुर इंद्रियों को 200 धनुष, इस तरह से इसका 100 है तो उसका 200, फिर 400। तो आगे असंगी पर्यंत यह विषय क्षेत्र दूना दूना होता गया है। फिर संगी पंचेंद्रिय के अलग से बताएंगे वो। चक्षु इंद्रिय का यहाँ नहीं बताया, तीन इंद्रियों की बात बताए, स्पर्शन रसना और घ्राण। अब आगे 49 को बताएंगे। उनतीस योजन सया चौवन्नातः यहोति नायौवा चौरिन्दियस्स नियमा चक्षुफासो सुनियमेण। चतुरिंद्रिय जीव के चक्षु इंद्रिय का विषय नियम से 2954 योजन प्रमाण है। अब चतुर इंद्रिय को ही वो चक्षु इंद्रिय है, फिर पंचेंद्रिय असंग की बात आगे बढ़ेंगे उससे डबल। मैक्सिमम या इतने दूर तक को इसकी वो जिसको कहेंगे उत्कृष्ट उसकी लिमिट। इंद्रियों के द्वारा कहां तक को जान सकते हैं, कौन से इंद्रिय वाला कहां तक को जान सकता है उसकी ये लिमिट बताए। अब पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय की बात 50 नंबर की गाथा में बताएंगे। उनसठी जो यनसया अठयतः योजना मुने यौवा पंचेंद्रिय सन्नीणम चक्षु पासो मुने यौवा। पंचेंद्रिय असंगी जीवों के वो संगी लिखा है उसको असंगी करो। क्योंकि वो सब चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय है, वो चतुरिंद्रिय का 2954 देखा था उससे डबल 5908 असंगी का होगा। ऊपर प्राकृत में पंचेंद्रिय सन्निनम लिखा तो उसमें तो वो तो स्वर का लोप होने के नियम है, परंतु उसका अर्थ असंगी नहीं लेना, असंगी लेना। इसलिए हिंदी में लिखते समय पंचेंद्रिय असंगी लिखना योग्य है जीवों के। आप उसमें क्या लिखा है? असंगी लिखा है। चक्षु इंद्रिय का विषय 5908 योजन प्रमाण जानना, ये योजन में बात है, पहले धनुषों में बात थी। अब 51 नंबर अठे वधनु सहसा विसवो सोदसतः असन्निस ये देना यौवा पोगल परिणाम जो एण। असंगी पंचेंद्रिय जीव के श्रोत्र का विषय 8000 धनुष प्रमाण है। 8000 धनुष यानी कितने हुए? 2000 धनुष का एक कोष होता है और चार कोष का एक योजन होता है, यानी एक योजन प्रमाण हो गया ये। इस प्रकार पुद्गल परिणाम योग से ये विषय जानना चाहिए। अब संगी पंचेंद्रिय की बात करेंगे। पासे रसे यगंधे विसोणवजो यणामुणे यौवा बारह जो यण सोदे चक्षुशुद्धं पवखामी। संगी पंचेंद्रिय जीवों के स्पर्श रस व गंध विषय क्षेत्र 9 योजन प्रमाण तथा श्रोत्र का 12 योजन प्रमाण जानना चाहिए। ये उत्कृष्ट क्षेत्र की बात है, चक्षु के विषय को आगे कहते हैं। अभी नेक्स्ट कथा में बताएंगे। सत्ते ताल सहसा बेचे वसया हवन्ति ते वट्ठा चक्षिन्दियस्स विसवो उक्कसो होदी अदिरितो। चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय 47,263 योजन से कुछ अधिक है, यानी 7 विषांश अधिक है। यह हमने त्रिलोकसार ग्रंथ में निकाला था, आपको याद होगा क्योंकि यहाँ चक्रवर्ती अयोध्या में है और वो निषदाचल पर जो आता है सूर्य, तो सूर्योदय के समय उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया था तिरछा ऐसा। एक 159 पृष्ठ पर आते हैं अभी। यानी ये इंद्रियों के द्वारा उत्कृष्ट जो डिस्टेंस है कहाँ तक के विषय को जानते उसकी बात यहाँ बता दी। इस आगम से भी उक्त चार इंद्रियों के अप्राप्त पदार्थ का ग्रहण जाना जाता है। अरे अभी एक इंद्रिय से बात बताई ना, एक इंद्रिय थोड़ी मुनि है। और चक्षु इंद्रिय का विषय तो चक्रवर्ती को बताया है। ये तो इंद्रियों की जो अधिक से अधिक आप कितना दूर तक का देख सकते हैं? एक माइल तक हा? और चांद सूरज कितना दूर है? वो इतना 800 योजन ऊपर है ना। हम तो ऑर्डिनरी चीजें देखते हैं कि हम क्या देखते क्या नहीं देखते हैं। इतना दूर का देखते और नजदीक का नहीं देखते, ऐसा है ना? यानी इसमें ये तो अप्राप्त को भी ग्रहण होता है ये कहना चाहते हैं। यानी उनको प्राप्त का ग्रहण वो व्यंजना वगैरह, अप्राप्त का ग्रहण वो अर्थावग्रह। यानी उनको अर्थावग्रहण नहीं होता ये मानना ये गलत है, ये भी कहना चाहते हैं। यानी केवल प्राप्त को ही ग्रहण होता है ऐसा नहीं, अप्राप्त को भी ग्रहण करते हैं, जिस तरह से उसका उन्होंने अर्थ किया। अब यहाँ पढ़ते 159 पेज पर, इस आगम से भी उक्त चार इंद्रियों के अप्राप्त पदार्थ का ग्रहण जाना जाता है। नौ योजन के अंतर से स्थित पुद्गल द्रव्य स्कंध के एक देश को प्राप्त कर इंद्रिय संबद्ध अर्थ को जानते हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। यानी ऐसा भी मत है कि वहां से वो पुद्गल बीच वाले जो इतने डिस्टेंस वाले पुद्गल परमाणु स्कंध जो है वो उसके निमित्त से वहाँ उसमें कुछ चेंजेस होते होते अपने यहाँ तक टकराते। जैसे वो केवली की वाणी छूटी और वो श्रोत्रेंद्रिय में आके गिरी और फिर वहाँ वो शब्द रूप परिणमित हुई, यानी वो उसका कांटेक्ट हुआ, ऐसे ही कहते हैं। परंतु इन्होंने उसका इनकार किया है। परंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर अध्वान प्ररूपणा के अध्वान यानी वो उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहने का कोई कारण ही नहीं बनता, फिर निष्फल होने का प्रसंग आता है। और अध्वान द्रव्य की सूक्ष्मता का कारण नहीं है, अध्वान यानी वो तो सीमा उसकी जो यानी उसका डिस्टेंस द्रव्य की सूक्ष्मता का कारण नहीं है, क्योंकि अपने महान परिमाण को न छोड़कर बहुत योजनों तक गमन करते हुए मेघ समूह के देखे जाने से हेतु अनैकांतिक होता है। यानी अगर आप हेतु यानी जो हम कोई दलील करते हैं कि जितना लंबा है वहाँ वो द्रव्य सूक्ष्म है, ये जरूरी नहीं है। सूक्ष्म द्रव्य ही दूर से आते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि तो मेघ भी दूर तक जाते हुए देखे जाते, ये यहाँ उनकी दलील है। दूसरे, यदि इंद्रिया प्राप्त पदार्थ को ग्रहण करने वाली ही होती तो अध्वान का निरूपण न करके द्रव्य प्रमाण की प्ररूपणा ही की जाती है। यानी प्राप्त यानी कॉन्टैक्ट में आते हुए को ही अगर ग्रहण करता ऐसा कहेंगे तो फिर वो डिस्टेंस कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कितने भी डिस्टेंस से क्यों ना हो प्राप्त होने पर जानता है, ऐसा उसका अर्थ हो जाता है। यानी कितनी दूरी तक जानता है ये कहने का कोई सवाल ही नहीं था। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। इसके अतिरिक्त नौ योजन के अंतर में स्थित अग्नि और विष से स्पर्श रस के तीव्र क्षोभ से युक्त जीवों के क्रमशः दाह और मरण होना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां प्राप्त पदार्थ का ग्रहण करने वाली है। अगर ऐसा मानेंगे कि उसके निमित्त से बीच वाले पुद्गल स्कंद उस रूप परिणमित होते होते वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, यदि ऐसा मानेंगे तो जिनके वो क्षमता बताई ना इतने नौ योजन से दूरी पर, तो नौ योजन दूर पर कोई अग्नि है या विष है तो उसका कांटेक्ट भी हो जाता है अपने इंद्रियों के साथ, तो वो तो उसके द्वारा मर भी सकता है, ये कहना चाहते हैं। और इसी कारण उतने मात्र अध्वान में स्थित अशुचि पदार्थ के भक्षण और उसके गंध से उत्पन्न दुख भी होना चाहिए। यानी इतनी दूर तक अध्वान यानी दूरी तक, यानी इतने दूरी तक जो कोई अशुचि पदार्थ पड़े हुए हैं, उसके भक्षण का भी दोष आ जाएगा और उसके गंध से दुख भी हो जाएगा, क्योंकि इतने दूर तक का जानने का उनका है और वो कांटेक्ट होने से जान रहे हैं, वो उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। शंका, श्लोक 54। अच्छा, शंका में वो 54 का श्लोक दे दिया। पुट्ठम सुने सत्यम अपुट्ठम चेयपस्सदेरुवम गंधम रसम च फासम बद्धम पुट्ठम च जानादि। शंकाकार पूछते हैं, अभी उन्होंने पूछने के प्रश्न के लिए सूत्र प्रस्तुत किया है, श्रोत्र से स्पृष्ट शब्द को सुनता है, स्पृष्ट यानी स्पर्शा हुआ, परंतु चक्षु से रूप को अस्पृष्ट ही देखता है, यानी वो आंखों से वो कांटेक्ट में आकर स्पर्श करके नहीं देखता है, स्पृष्ट को नहीं देखता, देख भी नहीं सकता। शेष इंद्रियों से गंध रस और स्पर्श को बद्ध व स्पृष्ट जानता है। इस सूत्र से इंद्रियों के प्राप्त पदार्थ का ग्रहण करना जाना जाता है, यानी ये सूत्र में बताया है कि शब्द भी वो कानों पे पड़ता है तब उसको जानता है वगैरह वगैरह, इसलिए प्राप्त है ने वो स्पर्शे हुए को जानता है। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि वैसा होने पर अर्थावग्रह के लक्षण का अभाव होने से गधे के सिंह के समान उसके अभाव का प्रसंग आवेगा। तो फिर शंकाकार अभी थक गया, कहते फिर इस गाथा के अर्थ का व्याख्यान कैसे किया जाता है, उसका समाधान इस शंका के उत्तर में कहते, जो गाथा शंकाकार ने प्रस्तुत की है उसी का अर्थ बता पूछ रहे। चक्षु रूप को अस्पृष्ट ही ग्रहण करती है, च शब्द से मन भी अस्पृष्ट ही वस्तु को ग्रहण करता है। अभी स्पृष्ट ने स्पर्शा हुआ, शेष इंद्रिया गंध रस और स्पर्श को बद्ध अर्थात अपनी अपनी इंद्रियों में नियमित, उसको अर्थ बद्ध किया, नियत नियमित व स्पृष्ट ग्रहण करती है, और च शब्द से अस्पृष्ट भी ग्रहण करती है, यानी केवल स्पर्शे हुए को ही नहीं अस्पर्शे हुए का भी ग्रहण करती है, उसका अर्थ होता है। स्पृष्ट शब्द को सुनता है, यहां भी बद्ध और च शब्दों को जोड़ना चाहिए, बद्ध ने वो नियमित और चयन स्पृष्ट को भी और अस्पृष्ट को भी, क्योंकि ऐसा न करने से दूषित व्याख्यान की आपत्ति आती है, यानी हमारे व्याख्यान में दोष आ जाता है। इस प्रकार संक्षेप से मति ज्ञान की प्ररूपना की है। मति ज्ञान की इतनी चर्चा चली ना, अवग्रह या अवय धारणा, और हर एक के ऊपर इतने प्रश्नोत्तर हो गए, वो संक्षेप से। हाँ, विस्तार से जानना चाहो तो विस्तार से भी है ना, इसके दो अर्थ के। प्राप्त का अर्थ स्पर्शा हुआ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कहना, ये स्पर्शा हुआ भी जानता है और नहीं स्पर्शा हुआ को भी जानता है, प्राप्त को भी जानता है अप्राप्त को भी जानता है, ऐसा अर्थ। चक्षु को छोड़कर की बात है, अन्य चार की बात हो रही है, वो तो अस्पृष्ट को ही ग्रहण करता है, ही लगाया था ना उसमें, चक्षु और मन के बारे में अस्पृष्ट को ही ग्रहण करता है। अब श्रुत ज्ञान के स्वरूप को कहते हैं, श्रुत शब्द कुशल शब्द के समान जहत स्वार्थ वृत्ति यानी लक्षणा विशेष है, जैसे कुश काटने रूप क्रिया का आश्रय करके सिद्ध किया गया कुशल शब्द उक्त अर्थ को छोड़कर सब जगह पर्यवदात अर्थ में आता है, उसी प्रकार क्या कहते हैं, ये कुश कुश समझ लें काटना, पर कुशल का अर्थ एक्सपर्ट होता है, तो उस शब्द का जैसे उसका अर्थ नहीं होता है, यही तो कह रहे हैं। ऐसे कहते हैं कुश काटने रूप क्रिया का आश्रय करके सिद्ध गया। अच्छा कुश यानी घास अगर हम लेते हैं, पर कुशल से अलग शब्द बनता है ना, उसी प्रकार श्रुत शब्द भी श्रवण क्रिया को लेकर सिद्ध होता हुआ रूढ़िवश से किसी ज्ञान विशेष में रहता है, न कि केवल श्रवण से उत्पन्न ज्ञान में, यानी रूढ़िवश से किसी अन्य अर्थ में वो आता है। इसे श्रुत ने सुना हुआ, परंतु तो अगर सुने हुए को ही अगर श्रुत ज्ञान कहेंगे तो एकेंद्रियों में भी है ना, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्ंद्रिय सबको मति शुद्ध दोनों ज्ञान होते हैं, और वे तो सुन नहीं सकते, उनको कोई कर्णेन्द्रिय है ही नहीं है चतुर्ंद्रिय तक के जीवों को, और उनके श्रुत ज्ञान तो होता है, तो ये विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है उसके लिए श्रुत ज्ञान शब्द आता है, वो रूढ़िवश से आता है, वो सुना हुआ उसी को श्रुत कहना ऐसा उसका अर्थ नहीं है, ये कहना चाहते हैं। जैसे कुशल शब्द को कैसे तैयार हुआ, तो कुश धातु से उसका तैयार हुआ, परंतु ये काटने रूप क्रिया के लिए कुश कहते, पर कुशल जो है वो अन्य अर्थ में आता है। लास्ट लाइन, वह भी श्रुत ज्ञान मति पूर्वक अर्थात मति ज्ञान के निमित्त से होने वाला है। हमेशा देखते वो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक वो श्रुत ज्ञान होता है, क्योंकि कार्य को जो पालन करता है अथवा पूर्ण करता है वह पूर्व है, इस प्रकार पूर्व शब्द सिद्ध हुआ है। यहाँ क्या लिखा, श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है। शंकाकार पूछते हैं मति पूर्वत्व की समानता होने से श्रुत ज्ञान में कोई भेद नहीं होगा, क्योंकि सारे श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होते हैं, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं पाया जाएगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं है समाधान, क्योंकि मति पूर्वकत्व के समान होने पर भी प्रत्येक पुरुष में श्रुत ज्ञानावरण के क्षोभम बहुधा भिन्न होते हैं, अतः उनके भेद से और बाह्य निमित्तों के भी भेद से श्रुत के हीनाधिकता का संबंध होता है। यानी जैसे मति ज्ञान में मति ज्ञानावरण निमित्त है, यहाँ पर भी श्रुत ज्ञानावरण निमित्त है, और उसके भी बहुत सारे भेद है, और वो भेदों के निमित्त से और बाह्य निमित्तों के भेदों से भी इसमें भी हीनाधिकता पाई, इसके भी बहुत सारे भेद होगी ज्ञान के। शंका, जब आद्य श्रुत विषयता को प्राप्त हुए अविनाभावी वर्ण पद एवं वाक्य, वर्ण ने अक्षर, पद ने शब्द, वाक्य तो समझते हैं आप, आदि भेदों को धारण करने वाले शब्द परिणत पुद्गल स्कंध से, यानी जो हम वाक्य आदि सुनते हैं शब्द वाक्य, वो क्या है, शब्द परिणत पुद्गल स्कंध है, उनसे तथा चक्षु आदि के विषय भेद होने से संकेत युक्त पुरुष घट से जलधारणादि कार्य रूप अन्य संबंधी को अथवा अग्नि आदि से भस्म आदि को जानता है, तब श्रुत से श्रुत का ज्ञान होता है। ये शंकाकार की शंका चल रही है। अतः श्रुत का मतिपूर्वकत्व लक्षण अव्याप्ति दोष युक्त है। अव्याप्ति ने सभी जगह नहीं पाया जाता, उसके लिए उन्होंने क्या सभी जगह नहीं पाया जाता ये कहना चाहा। तो कहते हैं श्रुत विषय यानी वो सुनने के विषय क्या है, वर्ण पद और वाक्य, और उससे परिणत शब्द परिणत ऐसे जो पुद्गल स्कंध से है, और चक्षु आदि के विषय भेद होने से संकेत युक्त पुरुष घट से जलधारणादि कार्य रूप, यानी घट के द्वारा जल धारण करता है ऐसा कार्य जानता है, या अग्नि को जानकर भस्म आदि को भी जानता है, तब श्रुत से श्रुत का ज्ञान होता है। श्रुत से यानी सुनकर वो होता है, इसलिए उनका कहता है कि वो मतिपूर्वक होता है, ये सब जगह लागू नहीं होता, ये उनका कहना है। इसलिए उसका अव्याप्ति दोष कहा। ये दोषों के नाम मालूम है आपको? अव्याप्ति नाम सुना नहीं है? सुना है हाँ। दूसरा कौन सा होता है? अतिव्याप्ति और असंभव। ये लक्षणाभास कहेंगे, या ये इन दोषों को टालकर लक्षण होने चाहिए। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति यानी क्या? लक्षण ऐसा चाहिए कि जो पूरे में व्याप्त हो। अगर थोड़े में लागू होता तो उसको हम लक्षण नहीं कहेंगे। यदि हम आपको पूछेंगे मति ज्ञान ये जीव का लक्षण कहेंगे तो क्या दोष आएगा? तो फिर अरिहंत सिद्धों को कहाँ छोड़ना? क्या वो जीव नहीं है क्या? मति ज्ञानी वही जीव है ऐसा अगर हम कहेंगे तो, जो मति ज्ञान से रहित जैसे केवल ज्ञानी है तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगे, तो अव्याप्ति दोष है। आप कहेंगे तो केवल ज्ञान जीव का लक्षण कहो, हाँ तो संसारी जीव नहीं आएंगे उसमें। ये तो पर्याय की बात चल रही, केवल ज्ञान रूप पर्याय की, सामर्थ्य की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यानी लक्षण ऐसा चाहिए कि तो संसारी में भी चाहिए और सिद्ध में भी चाहिए, तो क्या कहेंगे हम? उपयोग लक्षण है, ज्ञान उसका लक्षण है, वो तो सब में पाया जाता है। हम ज्ञान का भेद करने जाओ तो फिर वो तो अव्याप्ति की बात आती। अब एक दोष ऐसा है कि अतिव्याप्ति, कि जिसका लक्षण हम कर रहे उसमें तो है ही है, अन्य में भी पाए जाते। जैसे हमने पूछा आपको ये गाय का लक्षण बताओ, तो हमने कहा कि जिसको सिंह होते हैं वो गाय है। तो क्या जिसको जिसको सिंह होते हैं वो सारे गाय है क्या? गाय को सिंह होते वो ठीक है, पर सिंह वाली वो सारी गाय ही है ऐसा है क्या? क्योंकि सिंह वाले अन्य भी पशु है ना, तो वो क्या हुआ? अतिव्याप्ति हो गया। तो ऐसा लक्षण बांधना चाहिए कि जो उसी में हो, अन्य में ना हो और उसके संपूर्ण में हो। जैसे हम जीव का लक्षण पूछते हैं तो ऐसा लक्षण चाहिए वो जीव को छोड़कर अन्य में नहीं होना चाहिए और सारे ही जीवों में होना चाहिए, तो हम कहेंगे ज्ञान ये जीव का लक्षण है, वो तो सही है। अगर हम कहेंगे जीव तो अमूर्तिक भी है, तो अमूर्तिकपना जीव का अभी मनीषा बेन बोलेगी, अमूर्तत्व जीव का लक्षण कहेंगे। जीव तो अमूर्तिक है तो अमूर्तिकपना उसका लक्षण कहेंगे, तो कुछ दोष आता है क्या? अमूर्तिक ही है बिल्कुल, तो हम उसका लक्षण बनाएंगे, तो सारे द्रव्य आगे आएंगे, हम भी जीव है कहेंगे। अरे पुद्गल तो मूर्तिक है, पर धर्म द्रव्य भी सामने आए, मैं भी अमूर्तिक हूँ, मैं जीव हूँ। अधर्म द्रव्य कहते हैं मैं भी अमूर्तिक हूँ, मैं जीव हूँ। आकाश द्रव्य, काल द्रव्य कहेंगे मैं भी अमूर्तिक हूँ, मैं भी जीव हूँ, तो ये नहीं चलेगा, तो अतिव्याप्ति दोष आएगा। तो अमूर्तिकपना जीव का है हम कह सकते, जीव का ऐसा है तो, पर उसका लक्षण अगर हम बांधना है तो लक्षण ऐसा ही होना चाहिए तो अन्य किसी में न हो। उसका वर्णन करते समय हम उसको अमूर्तिक है ये सब उसमें घटित कर देंगे, परंतु उसका लक्षण ऐसा एकमात्र उसी में हो ऐसा चाहिए और सब में होना चाहिए। कौन से सब? सारे जीवों में, तो हम उसको कहेंगे ज्ञान उसका लक्षण है, इसको कहते हैं। ये यहाँ शंकाकार ने पूछा है कि मतिपूर्वक ऐसा अगर कहेंगे तो अव्याप्ति दोष आ जाएगा, उसका समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यवधान के होने पर भी पूर्व शब्द की प्रवृत्ति होती है। जैसे मथुरा से पूर्व में पाटलिपुत्र है, इसलिए मतिपूर्व ग्रहण से साक्षात मतिपूर्वक और परंपरा से मतिपूर्वक भी ग्रहण किया जाता है। साक्षात मतिपूर्वक और परंपरा मतिपूर्वक ऐसे, जैसे श्रुत ज्ञान मतिपूर्वक होता है, तो हमने शक्कर, मैंने अभी बोला शक्कर, मति ज्ञान से जाना क्या आपने? कैसे जाना? मति ज्ञान से। कौन से इंद्रियों से जाना? बराबर, हमने ध्वनि सुनी शक्कर, और वो शक्कर ध्वनि मति ज्ञान से श्रोत्रेंद्रिय से सुनी आपने, और वो शक्कर पदार्थ आपको ख्याल में आ गया, ये श्रुत ज्ञान हुआ। अब शक्कर पदार्थ ख्याल में आया, अरे मुझे शक्कर लानी थी, या हमारे घर में भी इतनी शक्कर। अभी एक ही वो श्रुत ज्ञान से वो आगे भी श्रुत पूर्वक श्रुत 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 चला, परंतु सबसे पहले श्रुत ज्ञान हुआ तो मति पूर्वक हुआ था, इसलिए यहाँ क्या कहा, मति साक्षात मति पूर्वक या परंपरा से मति पूर्वक होता है। इसको भी परंपरा, क्योंकि सबसे पहले वो मति ज्ञान हुआ था, उसके बाद जो श्रुत ज्ञान हुआ वो श्रुत पूर्वक आगे का श्रुत ज्ञान चला, तो भी उसको मति पूर्वक ही कहने में आता है, ये उसका अर्थ है। हाँ ना, मति पूर्वक होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। वो तो श्रुत मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के अवलंबन से वो अन्य पदार्थों को जानता है, वो श्रुत ज्ञान है, उसका पदार्थ वो अलग है। अब यहाँ जो श्रुत ज्ञान की बात हो रही है, ये जो द्रव्य श्रुत के भेदों की भी बात करेंगे और उसको जानने वाले ज्ञान है, इसलिए यहाँ ज्ञान के ही भेद वो बताते हैं। तो कहते वह श्रुत ज्ञान दो प्रकार का है, अंग और अंग बाह्य। ये जो 12 अंग है उसको अंग या अंग प्रविष्ट भी कहते हैं, और अंग बाह्य ने इनके इन एडिशन 12 अंगों के इन एडिशन ये 14 प्रकीर्णक जो है उसको अंग बाह्य श्रुत कहते हैं। अंग श्रुत आचार आदि के भेद से, आचार आदि के भेद ने आचारांग श्रुत इस तरह भेद से 12 प्रकार का है, और दूसरा इन्हें अंग बाह्य जो श्रुत ज्ञान है जो प्रकीर्णक है सामायिक आदि भेद से 14 प्रकार का है, यानी सामायिक वो हमने चतुर्विंशति स्तव वंदना वगैरह, अथवा अनेक भेद रूप है क्योंकि चक्षु आदि इंद्रियों से उत्पन्न उसकी गणना का अभाव है। चक्षु इंद्रिय क्यों कहा, शब्द तो सुने जाते हैं और हम जो पढ़ रहे हैं कौन से इंद्रियों के द्वारा पढ़ रहे तो ये शब्दों की तो अक्षर रूप स्थापना होती ना, अ कैसे लिखना ब कैसे लिखना, तो वो अक्षर पढ़कर हमको वो तो ज्ञान हो रहा है, इसलिए वो चक्षु इंद्रिय को भी लिया वहां पर। शंकाकार पूछते हैं शब्द और उसकी स्थापना की श्रुत संज्ञा कैसे हो सकती है, नहीं उसको श्रुत क्यों कहे, शब्द तो सुना हुआ और स्थापना यानी जो अक्षर रूप है उसको भी श्रुत क्यों कह रहे हैं, हम वो श्रुत कह रहे हैं ना उसको, ये हमारे श्रुत है, आगम को श्रुत कहते हैं, तो उसको श्रुत क्यों कह रहे हैं। तो कहते यह कोई दोष नहीं है क्योंकि कारण में कार्य का उपचार करने से शब्द या उसकी स्थापना की श्रुत संज्ञा बन जाती है, यानी जो हमारे आगम है उसको भी श्रुत कहते हैं, क्यों, ये हमारे ज्ञान का कारण है। हमें जो श्रुत ज्ञान होता है उसका कारण ये सुना हुआ शब्द होगा या ग्रंथों के द्वारा हम जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा पढ़कर समझते वो हो सकता है, ये हमारे ज्ञान में कारण है इसलिए इसको भी श्रुत कहते हैं। क्या लिखा है, कारण में कार्य का उपचार करने से शब्द या उसकी स्थापना, स्थापना शब्द की स्थापना का अर्थ क्या होता है, ये जो हमने लिपिबद्ध किया उसको, अलग अलग भाषा की जो अलग अलग स्थापना है ना उसमें, कन्नड़ भाषा में हमारे ग्रंथ कितने, तो उनकी स्थापना अलग टाइप के, उनके जो आकार अलग है हमारे आकार अलग है, परंतु वो भी उसको समझते हैं पढ़कर, जैसे अंग्रेजी है वो अंग्रेजी लिपि में पढ़कर समझते हैं, हर एक भाषा की अपनी जो कोई लिपि होगी उसको हम यहाँ स्थापना अक्षर कहेंगे। अरे जैन क्या, वो सारे मूल ग्रंथ कन्नड़ से ही आए हैं। देखो पूरे हिंदुस्तान में सभी भाषिक जैन है, ये तो भाषा से जैन धर्म का कोई संबंध नहीं है, ये कश्मीर में भी है जैन। महाराष्ट्र क्योंकि देखो गुजराती, हमें क्या लगता है आप गुजराती हो तो गुजराती जैन है, ऐसा नहीं है, मारवाड़ी है कि नहीं है, महाराष्ट्र के ओरिजिनल महाराष्ट्र, देखो महाराष्ट्रीय जैन करते वो महाराष्ट्र के ओरिजिनल ही रहने वाले, हम कैसे, हम ओरिजिनल गुजरात के हैं, हम माइग्रेटेड है, ये हम ये सब जो है ना हम एक कम्युनिटी के, हम माइग्रेटेड है सब, ये सब हम इडर एरिया से सब यहाँ माइग्रेट हुए हैं, पूरी जो हिमर समाज है यहाँ पर वो सब माइग्रेटेड है, पर यहाँ ओरिजिनल महाराष्ट्र की जो यहाँ के सरने में वही उनके जादव है पाटिल है वो सारे महाराष्ट्रियन यहाँ के ओरिजिनल है, वैसे पंजाब के भी ओरिजिनल जैनी वहाँ के है, कश्मीर वहाँ के भी ओरिजिनली, पाकिस्तान में कितने ही है, वो लाहौर वगैरह कराची में वहाँ तो होते ही, और यहाँ सारे आसाम वगैरह बिहार वहाँ तो जैनी थे, वह तो बिहार होता था ना, वहाँ तो सारे गोत्र उनके 24 तीर्थंकरों के नाम से 24 गोत्र है उनके, आसाम वगैरह में एक आसाम ही आया था अपने शिविर में, तो सब जगह कोई भी अभी तमिलनाडु जो लोग केरल लोग कहीं पर जाओ वहाँ के लोकल जैनी है। और हमारे सारे आचार्य तो साउथ के ही है, ये सारे ग्रंथ वगैरह जो ये जो टोडरमल जी के सामने जो ग्रंथ थे वो कन्नड़ लिपि, संस्कृत टीकाएं थी सब कन्नड़ लिपि में, संस्कृत भाषा वही, हाँ उसी में लिखा हुआ था। ये अभी हम हमारी देवनागरी लिपि कहते हैं, इसमें अभी वो आया है, हाँ तीर्थंकर नॉर्थ के एक हुए, वह सौराष्ट्र के एक हुए, हाँ बाकी सब मुनि तो साउथ में गए थे ना तब से, तो वहाँ पर ही कितने तो वही परंपरा वहाँ चली ज्यादा। चलो अभी समय हो गया, जावाणी के ज्ञान ते सुजे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो नो मैं।